उनके आचार और उनके विचार पुजारी ग्रहण कर सके तो यह तिथि ये पुष्पांजलि है, और यदि ग्रहण न करके तो काम से सुनाओ घर से निकाल दिया तब तो पुष्पांजलि नहीं। पुष्पांजलि के लिए व्यवस्था की गई है उल्टू तो फूल देने के ही नहीं, उनके आचारों को और विचारों को ग्रहण करने की चेष्टा पूर्ण रूप से तो हम नहीं कर सकते, ये भी बात ठीक है, पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु जितने हमारे अंदर में शक्ति है, भी शक्ति है, बुद्धि है, उत्तर रूप में तो हम ग्रहण कर ही सकते हैं। उनकी पूरी शिक्षाओं को आचार विचारों को ग्रहण कर तो मुक्त हुए बिना तो नहीं समझ सकते, उनको बद्ध अवस्था में भी उनके जो विचार हमारे जो किए जो उनके उपदेश हैं उनको हमको अपने जीवन में आचरण करने की चेष्टा करें। स्वरूपा जी ने अपने अप्रकट काल में अंतिम समय में एक दिन पहले शाम को उन्होंने अपने एकत्रित शिष्यों को बाग बाजार मठ में बतलाया था, देखो हमने बहुत लोगों को कष्ट दिया, बहुत से लोगों को कष्ट दिया है, उनके तुम्हारे लिख भी चल रहा है धारण कर तारे पढ़े लिखे बहुत लोगों को कष्ट इसलिए दिया कि उनके अच्छे अच्छे शिक्षित लड़कों को हम आश्रम में ले आकर के उनसे भजन कराया, इसलिए उनको बहुत कष्ट किया, हमको विरोधी मानने लगे और हमने भजन राज्य के लिए निरपेक्ष शस्त्र जो उपदेश है हमने दिए, इसलिए और लोगों को भी बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि जाति ब्राह्मण का जाति ही ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण नहीं है, गोसाई का लड़का ही गोसाई नहीं है, किसी भक्त का लड़का ही भक्त नहीं है, किसी गुरु की स्त्री भजन नहीं करती है तो भी वो गुरुवाणी हो गई, ये सब नहीं। इस राज्य में जो भजन करता है वही बड़ा है, गुरु का बेटा यदि भजन नहीं करता, गुरु की स्त्री भजन नहीं करती, गोस्वामी का लड़का भजन नहीं करता तो वो गोस्वामी केवल नाम से नहीं, वो यदि भजन करा है तो उसको यथारूप सम्मान दो, हमने ये कहा। इसलिए जितने गोस्वामी लोग हैं, जितने ब्राह्मण गुरु लोग हैं हमारे विरोधी, एक न एक दिन वो समझेंगे कि हम उनका कल्याण किए हैं, एक दिन जरूर समझेंगे। हमने निरपेक्ष तक बात कही है, उस समय तो उनको लगी हुई उनको ठीक एक दिन की उपलब्धि हुई, और ये उपलब्धि हुई नौदीप के जितने बड़े बड़े गोस्वामी लोग और बड़े बड़े विद्वान लोग जो उनका घोर विरोध किए थे, पूर्व गुरु प्रभुपाद जी के अप्रकट के बाद में हमारे देवानंद गौड़ी और मठ में प्रभु हमारे गुरु जी के पास आए, उसने कहा कि वो परिवारी महापुरुष है, अब हम लोग समझ रहे हैं, उस समय हमने उनका घोर विरोध किया, बड़े बड़े विद्वान नामी यशस्वी, अब हम लोग समझ रहे हैं कि वो एक महापुरुष, भगवत भक्त के भाव लोग अब समझ गए, उनके बातों को अब हम लोग मान। उन्होंने कहा कि हमने निरपेक्ष बात करी, अच्छे अच्छे लड़कों को घरों से लाया, उन्हें भजन में लगाने की चेष्टा की, बहुत से लड़े, बहुत से नहीं भी लड़े, तो आज कल की सत्य को उपलब्धि करें। दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग सब लोग आए हो हमारे पास, आश्रय विग्रह के मूल आश्रय विग्रह के अनुगत्य में विषय विग्रह की सेवा, यही समस्त उपदेशों का सार है। आश्रय विग्रह बलदेव प्रभु जी और इसे सत्य राजा जी ने और उन्हीं के गुरु शिक्षा गुरु या शिक्षा गुरु, ये लोग आश्रय इस आश्रय विग्रह के अनुगत विशेष करके श्रीमती राधिका जी हमारे गौरियों में जन्म नित्यानंद प्रभु को भी ले, तो ये लोग आश्रय विग्रह है। आश्रय विग्रह के अनुगत्य गुरु के अनुगत्य में गुरु भी आएगा, गुरु के अनुगत्य में विषय विग्रह राधा कृष्ण या महाप्रभु है, गौर बताकर दिख रहा है या जिसकी जैसी भावना है, राधा कृष्ण जीवन है, उनकी सेवा करो। पहुंच के कष्ट आने के बोल प्रॉब्लम आएंगे, तरह तरह की विपत्तियां भी आ सकती हैं, लांछना आने पर भी, गंजना आने पर भी भगवत भजन और गुरु से बाल्य मत छोड़ो, मत छोड़ो, लाभ मत छोड़ो। यह जड़त्व शरीर एक न एक दिन जड़त्व मने वृद्ध हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, किसी काम में नहीं आएगा। इस जड़त्व शरीर को भी तन मन वचन के द्वारा गुरु जी के संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ, आत्मसमर्पण, और इसी जन्म में ये ठीक कर लो कि हमारे जीवन का, हमारे भजन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। ये ठीक हो जाने के बाद जीवन एक कभी सुबह सुपथ हो जाएगा, ये जीवन में ठीक होना चाहिए। यदि यह ठीक हो गया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो क्या हो जाएगा, उसका साधन भी निश्चित हो जाएगा। उद्देश्य नहीं ठीक होने से साधन नहीं ठीक हो सकता, इसलिए उद्देश्य ठीक होने से और उद्देश्य होने के बाद भी साधन ठीक होगा। जैसे रूप गोस्वामी महापुरुष जी का विचार उन्होंने जो संवाद हुआ सनातन गोस्वामी के साथ महाप्रभु का विचार, अंत में रामानंद के साथ महाप्रभु का भी विचार, उसमें साध्य और साधन दोनों की अंतिम चीजें बदलाई गई है, ये सब ठीक हो। इस तरह से अपने इस जीवन में ही ठीक करो, विशेष करके मैंने जो उपदेश किए उसके कुछ इसमें दिए गए हैं। जीवन चक्र हम लोग शाम को या दोपहर में कुछ अभी उपदेश पढ़ते और उपदेशों को पालन करने को करने के लिए चेष्टा की, वी टू ट्राई टू फॉलो द प्रिंसिपल द टीचिंग ऑफ सर्वपा एंड हाउ वी प्रैक्टिस इन हिज लाइफ
we could try to follow all these things.
Mahaprabhu के श्री छात्र में लिखे परम विजय के श्री कृष्ण संकीर्तन गौड़ी माता एकमात्र उपास है। शिक्षार्थक में लिखे कृष्ण नाम संकीर्तन, संकीर्तन कृष्ण नाम एक साधारण है, किंतु शिक्षार्थक में जो परम विजय से श्री कृष्ण नाम संकीर्तन वो क्या चीज है, वो चीज क्या है? पहले साधु संग, साधु संग के बाद में साधारण सत्ता भगवत सेवन की प्रवृत्ति, भक्ति लता का भी, और उसके बाद गुरु पदार्थ और विषम में गुरु सेवा, और उसके बाद में शिक्षा दीक्षा इत्यादि के बाद में विषम में गुरु सेवा, और उसके बाद में भक्ति राज्य में प्रवेश किया, कुछ कुछ अलग संवृत्ति, इसके बाद में कुछ निष्ठा हुई, उस समय में निष्ठा के बाद में वो परिपक्व होने के बाद में जब रुचि थोड़ी सी हुई, उस अवस्था में जो हरिनाम लेंगे कृष्ण के साथ में संबंध ज्ञान अलग संवृत्ति कुछ दूर हो गई, और उस समय में यदि हरिनाम दिया जाएगा तो ये हुआ विजय से, परम विजय से श्री कृष्ण संकीर्तन। ऐसे करने से नहीं होगा, लाख करो अपने मन से, क्योंकि भक्ति मन की और शरीर की वृत्ति नहीं है, यह है आत्मा की वृत्ति। इसमें भी हम बद्ध होने पर भी गुरु के माध्यम से हम जो हरिनाम करते हैं सेवा वृत्ति मिली है, इसलिए जो हरिनाम इत्यादि करते हैं सेवा काम करते हैं वो चित्त वृत्ति ही है, चित्त पूर्ण रूप से नहीं है, वो बुद्धि की कसरत नहीं है, किंतु गुरु पदार्थ भी नहीं हुआ और अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही और संबंध ज्ञान उदित नहीं हुआ, हमारे भजन का उद्देश्य क्या है ये ठीक नहीं हुआ, तो वो जो उसके द्वारा जो हरिनाम करेंगे जो ये सब नहीं हुआ, गुरु में अभी निष्ठा नहीं है, तो क्या होगा उसके द्वारा, ये तो दर्पण मार्जन नहीं होगा, ये तो दर्पण मार्जन भव महादावार निर्वापन, ये जो साथ है फिर ये नहीं होगा, लाख कोई प्रयत्न करे। इसलिए ये उनका विजय से श्री कृष्ण नाम शब्द भक्त विनोद ठाकुर जी ने पहले के श्लोक में इच्छा करके इसकी व्याख्या में ये सब चीजें दी है। ये प्रभुपाद जी का प्रधान उपदेश और इसके ऊपर में दिया गया है। एक बात और रखो, प्रभुपाद जी किस लिए आए, उनके गुरु कैसे थे, गुरु को देखो, जब हराधे राधे राधे प्रेममयी राधे राधे कुठाए दो राधे, यानि जब प्रेम से रोते हुए जब करते थे, ये कैसे आएगा? किसी पढ़े लिखे विद्वान धुरंधर के ये जो तत्व ज्ञान के कोई भी कोई व्यक्ति है उसको आएगा ये नहीं आएगा। सिद्धार्थ के समय गुरु में इनकी कितनी निष्ठा होगी और तब ये चीज आई है। यदि गुरु से शिष्य इस चीज को पा सके तो ठीक है, इस चीज के लिए चिंता करो, बुद्धि की कसरत इत्यादि के लिए चिंता मत करो, ये हम अपनी बुद्धि से ज्ञान सुन करके सब कर लेंगे, रामचंद्र पुरी हमारे ईश्वरपुरी पाठ से अधिक विद्वान थे, पढ़े लिखे जनता। ये कौन है? ये माधवेंद्र जी के शिष्य हैं, बहुत पढ़े लिखे थे। और ईश्वरपुरी पाठ जी कहते थे, पढ़े लिखे इतने नहीं थे, गुरु जी की पैखाना टट्टी उल्टी दिन रात उनकी सेवा, दिन रात उनकी सेवा, उनके साथ में रहना और सब प्रकार से उनकी सेवा करना, उनके विचारों को दिन रात सुनते। गुरु जी को ये सौभाग्य नहीं हुआ कि अई दीन दया करना चाहे मथुराना सदा अवलोक थे हृदय सदा आलोक अथवा हे देव हे दैत्य हे भुवन हे सबंधो हे कृष्ण हे चपर हे करुण हे नाथ हे रमन हे हा हा प्रदान भविता। ये किसको मिला? यह भाव रामचंद्र को मिला। सप्त में वैष्णवों की निंदा और उनके त्रुटियों को देखता था। महाप्रभु जी उसे कभी प्रसन्न नहीं हुए और ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाया। इसलिए वो भाव इनको मिला संपत्ति। तो गुरु से इस चीज को, कृष्ण के प्रति उनकी जैसी भावना है, उस चीज को पाने के लिए शिष्य को चेता है। ये कैसे होगा? जब तक संपूर्ण रूप में आत्म संपूर्ण रूप में नहीं करेंगे, तान मान बुद्धि इत्यादि जो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात्म अनुकूल्यम कृष्णाम शिरण, हमारे तन की मन की वचन की और इसके अतिरिक्त जितनी ये चेष्टाएं हैं, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक, निवृत्ति मूलक में अपराध न हो, अब प्रवृत्ति मूलक में इनकी सब प्रकार की चेष्टाएं और इससे अतिरिक्त भावना, कौन सी भावना? यति इस वर्तम भावना, वो ये सबको गुरु सेवा में, वैष्णव सेवा में, भगवान की सेवा में न लगाएं। और अनुकूल्य रूप में संपूर्ण रूप से जो उसका तात्पर्य है वो न लगाए, अपने सत्ता के अनुसार, अपने शिक्षा में न लगाए तो ये सब चीजें नहीं होती। गुरु के चीजों को ये पा नहीं सकता, इसलिए हम लोग को इसके लिए चर्चा कर, हमको इसकी अनुभूति है। गुरु वैष्णव की सेवा की, गुरु जी की निष्कपट उसमें सेवा की, दिन रात छाया छाया पूज्य पाठ बामन महाराज इत्यादि को देखो, आज ये लोग कैसे हैं। इन्हें इसी रूप में अपने बुद्धि का भाव का भी कुछ मत लगाओ। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने पांच चार प्रकार के जो विचार हैं, प्रत्यक्ष विचार, परोक्ष विचार, अपरोक्ष विचार, अधोक्ष विचार और अवग्रह, इसमें प्रभुपाद जी आए थे या हमारे गुरु वर्ग जितने आए थे इसके लिए आए थे, अप्राकृत विचार के लिए। प्राकृत विचार में मत बहो, प्राकृत विचार माने अपने बुद्धि के द्वारा जो हम विचार करते हैं और इसके द्वारा जो चीजें प्राप्त होती हैं, ये क्या चीज है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष पर उतना विश्वास मत करो, करो यदि उसके अनुगत हो, आप प्राकृत से अनुगत हो तब तो कर, न मत करो। यदि मूल जो शब्द है, शब्द माने क्या? गुरु परंपरा से आगत जो हमारे विचार हैं, हमनाय जिसको कहते हैं, उसके अनुगत यदि हो तो ग्रहण करो, नहीं तो उसको दूर रखो। प्रत्यक्ष की कोई भी भरोसा नहीं। अपरोक्ष, प्रत्यक्ष परोक्ष, परोक्ष माने क्या? स्वर्ग इत्यादि ये सब परोक्ष हैं,
स्वर्ग जातीय जो सुख है ये भी परोक्ष है। अपरोक्ष अद्वैतवाद इत्यादि ब्रह्मवाद शंकर का वाला नहीं, जो ब्रह्मवाद सनातन सनातन इत्यादि का जो या पहले हमारे सुखदेव गोस्वामी का ये ब्रह्मवाद, ये अपरोक्षवाद। और शंकर का क्या है? अपराध है, वो इसमें नहीं आता। इन सबको दूर करके अध्यक्ष हरान मध्व विष्णु स्वामी निम्बादित इत्यादि के जो विचार हैं, वैकुंठ के विचार जो हैं, ये है अधोक्षज अथम अतिक्रांतम अक्षजम ज्ञान। अक्षज माने क्या? न अधोक्षज अर्थात प्राकृतिक इंद्रियों के जो ज्ञान है उनको दूर करके, अपरोक्ष तक को भी दूर करके, प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष तक को दूर करके लक्ष्मी नारायण जैसी सेवा है ये सब को भी दूर करके, इनसे भी ऊपर उठ कर अप्राकृतिक भूमिका में जाकर जो कृष्ण और राधा की सेवा है इसके लिए वो लोग आए हैं। हमारे गुरु परंपरा कभी विशेष करके प्रभुपाद हैं, वो क्या चीज है? अपराकृत जो है वो प्रज की सेवा है। और प्रज की सेवा में भी उनका स्वरूप क्या है? प्रभुपाद जी का वो उनके प्रणाम में उनने दिए हैं, नमो विष्णु उपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्ति सिद्धांत सरस्वती की नाम श्री बात्सुधानवी देवी दैता दैता उनकी दैता के कृपा कृपा के पात्र हैं। श्रीमती राधिका जी के कृपा पात्र मातृच उज्जवल श्रीमत प्रेम को देने वाले हैं। उन्नत उज्जवल ये पार्थिव भाव है, उन्नत उज्जवल भाव तो देखो जिससे उनका स्वरूप क्या है। इसमें उनके जो प्रणाम मंत्र हैं दो विचार हैं, एक है बहिरंग विचार भक्ति का और एक दूसरा क्या है? अंतरंग विचार, जिसमें मायावाद इत्यादि को ध्वंस करने की बात कही गई है। प्रेमानंद भक्ति का इसके बाद में
सिद्धांत और
भ्रम ये क्या है? एक्सटर्नल भाव है, जरूरी है ये भी, ये भी जरूरी है किंतु ये मुख्य है। प्रेम को देने के लिए आए और उसमें भी विशुद्ध ब्रज के प्रेम को, उन्नत उज्जवल प्रेम को, जिसको महाप्रभु देने के लिए आए, ये उनका भाव है, ये उनका स्वरूप है। इसलिए अपराधिक विचार यदि उनका है तो ये विचार है, उसी विचार से ये परम विजय के श्री कृष्ण संकीर्तन ये करो तो ये सातों जो है हृदय में आएंगे। और इस पद्धति को नहीं ग्रहण करके जहां अपना विद्या बुद्धि ये सब लगाया हम समझ लेंगे, इसलिए एक साधारण में व्यक्ति भी किस प्रकार से अपने गुरु की सेवा यदि करता है अपनी सारी बुद्धि विद्या कौशल को छोड़ करके तब उनका भाव उनके अंदर में प्रविष्ट होगा, प्रवाहित हो जाएगा, अन्यथा नहीं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान लोग पिछड़ जाते हैं और साधारण जो है बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। हमारे जीवन का भी यही कुछ अनुभव हम कर सकते उन लोगों को बतला रहे हैं। विषय विग्रह कृष्ण एकमात्र भोगी एक व्यक्ति सब साक्ष, ये तो आप जानते ही हैं, कृष्ण ही एकमात्र। यहाँ पर कृष्ण बने के इसमें भी कुछ छिपा हुआ है, श्रीमती राधिका की भी स्थिति ही है, राधिका के लिए कृष्ण का ज्ञान है, यहाँ कृष्ण भी राधिका जी के लिए भी कहा गया है, गोपियों के लिए भी कहा गया है। हरिभजन काली व्यक्ति सकले निर्बोध हो आत्मघात, जो हरिभजन नहीं करते हैं कैसे आत्मसमर्पण करके संपूर्ण रूप से अपनी इच्छाओं को त्याग करते, जिस प्रकार से अर्जुन ने कहा ना
कोई से वचन
वही और
हम शादी मान शांत प्रबंधन
हम अपने विद्या को भी सब छोड़ रहे हैं, अब आप हमको ग्रहण की सतीश ने उसको सफी उसको बदला सज्ञ करके मठवासी करने ऐसी प्रधान कार्य मठवासी मठवासी माने क्या है मठ में रह करके मठ के आचारों को विचारों को संपूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं ये मठवासी मठ में रह करके भी मठ के विचारों को ग्रहण नहीं करते अपने मन से इधर उधर जाते हैं महिलाओं के साथ में इधर उधर जाते आते हैं या अपने मन से इधर उधर रहते हैं कोई मठ के कानून को नहीं मानते प्रवचन में नहीं आते आरती में नहीं आते उसके नियमों को पालन नहीं करते तो मठवासी नहीं मठ में लाख वर्ष भी रहे विशेष सुविधा नहीं इसलिए मठ के विचारों को मानते यहां पर की शिक्षा दी जाती है जिसमें निर्बोध व्यक्ति भी उस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है और उसके प्रति जिसका आदर नहीं है उसको सुनेगा ही नहीं अनुभव नहीं कर पाएगा इसलिए मन बात सज्ञ करना खुजलाहट हम तो रोज ही करते हैं मच्छर काट दिया दिन रात उसी के लिए कैसे मच्छर को दूर करें उसी में लग गए उसी तरह से लगा अरे मच्छरदानी लगा करके वहीं पर बैठ जाओ भजन करो गुड नाइट से तो गड़बड़ हो जाएगा ना
मक्खी
दर्द करेगा क्या क्या होगा विकास हो जाएगा इसलिए ये समझ करो मारने का चेष्टा मत कर रहे हैं तो इसलिए मठवासियों को सज्ज करना चाहिए ये उपदेश किसके लिए है यदि कोई ऐसा काम ही ना हो जो सज्ज करने की जरूरत हो तब फिर सज्ज करने की बात क्या है कोई तंग करेगा कोई कुछ करेगा कोई बच्चा इसको तो सहना करते हैं बेटा या बेटी अपनी मैया को कितना तंग करता है मैया रात में सो रही है क्या करेगा बेटा ऊँ करते हुए गाय इधर करेगा उधर करेगा चट्टी करेगा पेशाब करेगा क्या क्या करेगा मैया क्या करती उस प्रकार के मठ में छोड़ करके मत रहो क्यों मठ का प्राण पान क्या है भजन तो कुछ न कुछ हरी कथा आलोचना होगी हर जगह नहीं है तो ऐसे मठ को छोड़ दिया जाए यदि गुरु ऐसे नहीं है और मठ ऐसा नहीं है जहां पर भजन नहीं हो सकता है तो गुरु बदल दो गुरु बदल करके ऐसे गुरु करो जो कि भजन की करो कृष्ण भजन ही प्रधान की और यदि नहीं है तो देख समझ करके भजन करने के लिए वैसे मठ में रहने की जरूरत है हमारा पहले से विचार है और यदि है तो उसके लिए हम सब सत्ता करते हैं उसमें बहुत तरह तरह के योगी इत्यादि रहते हैं उसमें प्राण है हरि कथा कुछ न कुछ भक्ति की क्रियाएं हैं यदि कुछ श्रद्धा भी नहीं है तो तुलसी परिक्रमा होगी मंदिर की परिक्रमा होगी कुछ लोग आएंगे भक्ति संबंध प्रश्न करेंगे ये प्राण है यदि हम ऐसे स्थान को छोड़ करके जाएंगे तो क्या होगा भक्ति का प्राण ही नहीं रहा तथा रह करके क्या नहीं रह करके रंग इधर का रंग इसलिए प्राण को ठीक रख करके कर हमारे देखो वो पंडित जी थे मैं जाना पंडित जी
गोपिका नगर ही है
हाँ गोपिका नहीं हमारे भक्ति बेसिक आचार्य महाराज
उपाध्यक्ष
जिनके बनाए हुए कुछ श्लोक भी हैं बहुत विद्वान तो प्रभुपाद के पास में कोई आए बोले कि मैं भागवत पढ़ना चाहता हूँ उनके लिए तो वो क्या भागवत जानता भागवत पढ़ो वैष्णव दास के यहाँ वो क्या करते हैं दिन रात हरिनाम करते हैं मठ की सेवा में ऐसे लगे हैं भगवत चिंतन करते हैं तो और कुछ नहीं तो उनके पास में उनको भेजा जब उनका टेस्ट कर देगा तब समझे हाँ इनका टेस्ट भी भागवत है ऐसे हम लोग रूपानु भक्तगण निज शक्ति प्रति आस्था स्थापन ना करिया आप स्थाने सफल महिमा आरोप पर क्या कर सब बड़ी
रूपानुरूप भक्तगण
जो रूप को शामिल किया अपने बच्चे
यमुना जो चाहते हैं अपनी शक्ति के प्रति अपनी बुद्धि के प्रति अपनी पांडित्य के प्रति अपने कोई भी चीज के प्रति आस्था ना करके विश्वास न करके क्या करें आदर स्थान आदर माने गुरु ज्ञान गुरु नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु और राधा कृष्ण और यमुना किंतु मूल यहाँ पर कहा गया है गुरु के लिए और गुरु और साथ ही साथ में राधा कृष्ण महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सब इसमें आ जाएंगे तो आदर्शा में इनकी कृपा से ही जो कुछ हो भजन भी होगा साधन भजन भी होगा वो गुरु कृपा से होगा भगवान की कृपा से ही होगा वो कृपा है चाहे वो भजन रसोई बना करके समान सब दे दें
भक्त प्रसाद या भगवत प्रसाद
वो भक्त चाहे वो चावल दाल तरकारी मसाला आग इत्यादि सब दे दें और रसोई बना करके भगवान का भोग लगा करके खाएगा
या
भगवान का जैसा भी हमने भोग लगाया है लूची पूरी अन्न चावल दाल तरकारी ये खाएगा
चपाती
और ये हम तो वही चपाती हैं हम अपने आप है कुछ किंतु है दुर्भाग्य बना बनाई चीज है उसको कृपा ये भगवान की एक विशेष कृपा और साधन भजन करने के लिए जो उसकी व्यवस्था करते हैं ये भी भगवान की कृपा है इसलिए इन सब चीजों को समझ करके अपने बुद्धि के प्रति विश्वास छोड़ो इसी का नाम शिक्षा है अपनी बुद्धि के प्रति आस्था न रख सके आप कौन है
आपर स्थान
मैंने ये आकर गुरु से आरंभ कर गुरु और राधा कृष्ण महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इत्यादि आकर तो गुरु से आरंभ होकर के सब महिमा का आरोप करो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे इतने शिष्य लोग आकर के हमारी व्यास पूजा करते हैं मैंने इन सबको ग्रहण करके हम अपने गुरु जी के चरणों में क्योंकि ये हमारा कोई हमारे गुरु देव जी का साधन है ये प्रभुपाद जी अपने जीवन में सब कर करके दिखला भी रहे हैं तो कहां के गुरु वृंदावन के किंतु ये दिखला रहे हैं इन चीजों को ग्रहण करो जब हमें वहां से घर छोड़ करके नौकरी उकड़ी छोड़ करके नवद्वीप में आया और संन्यास के समय या उसके पहले गुरु जी ने कहा कि तुमको हम लाल कपड़ा देना चाहते हैं तो हमने कहा कि हमने अपने माता को माता का और पिता के प्रति जो हमारा आदर था स्नेह था जो भक्ति थी पत्नी के प्रति हमारी जो प्रीति थी संसार के प्रति हमारा योग्यता हमने सब निकाल लिया और आपके चरणों में हम आप चाहे हमको नंगा रखिए संन्यास दे दीजिए आप हमको लाल कपड़ा दीजिए पत्थर भिखारी बना दीजिए चाहे जो कुछ भी बनाइए अब हमने संपूर्ण रूप से तो गुरु महाराज जी के आंखों में आंसू आ गए और वहां पर सनातन प्रभु थे सनातन प्रभु गुरु महाराज 85 उस समय तो 90 बांधे पर गुरु जी ने उनके तरफ निशाया यही सब कृपा का ये पात्र था इसलिए उनकी कृपा हम लोग कुछ कुछ थोड़ी सी उपलब्धि कर रहे हैं आज हमको जिस भक्ति ने हमको लालसा हो रही है ये सब का कारण क्या है उनकी कृपा है इसलिए इन चीजों को समझ करके ऐसा ही बनो बहुत अच्छे अच्छे उपदेश है नाम ग्रहण और भगवान का साक्षात्कार दोनों एक है नाम ग्रहण कैसा नाम वो जो बतलाया शिक्षा वो ऐसा नाम संबंध ज्ञान युक्त अनर्थ रही ये जो नाम है ऐसा जो नाम है और भगवान का साक्षात्कार दोनों एक है इसकी उपलब्धि होगी भगवत लोग यहां भी आकर के इससे मिलान करो सुतुष्ट पुष्टि खुद पाए युवा भक्ति परेशान अनुभव विरक्ति अन्यत्र व्यक्ति अनप्रत्यक्ष एक्सप्रेस कार प्रपद्यमान यहाँ पर प्रपद्यमान से दे दिया एक वहां पर क्लॉज दे दिया प्रपद्यमान होना चाहिए तब वो प्रपद्य होकर के शरणागत होकर के संपूर्ण रूप से जो हरि नाम करते हैं और भगवान का काम वो उपलब्धि करेगा सर पद पद पर उसकी उपलब्धि होगी पीछे आगे नहीं उसका मन सब समय प्रसन्न रहेगा जिसका भी मन प्रसन्न नहीं है तरह तरह के अभी प्रॉब्लम्स और ये सब दिख रहे हैं इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है वहां प्रपद्यमान नहीं है उसमें कुछ कमी है नहीं तो इसमें प्रसन्न रहेगा दोनों एक ही चीज है और उसकी उपलब्धि होगी संसार से व्यक्ति भी होगी चाहे मूर्ख हो कोई भी बात नहीं है या सिद्धि किंतु ऐसा होने पर तीनों चीज एक संसार से विरक्ति पहले होगा भगवान की उपलब्धि चतुष्टि पुष्टि और तब होगा विरक्ति ये तीनों चीजें जरूर होगी इसका मन सब समय चंचल है बहुत चंचल इसका मतलब क्या है अभी बहुत गर्व गुरु पदार्थ करने के साथ ही साथ में आत्मनिवेदन तुआ पद करी बैनु परम सुखी दुख दूरे गलो यदि ये नहीं हुआ शिक्षा काल में और मन सब चंचल हो रहा भटक रहा है सुखी हो रहा है तो इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ी है उसको ठीक करना है जरूर ठीक करो इसलिए भगवान का साक्षात्कार इसलिए उसके अंदर में आएगा फिर आएगा सटपटाहट आएगी उत्कंठा आएगी वो है उत्साह नित्य धैर्य सतत संग प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्ति सब हर सेवा की प्रवृत्ति उत्कंठा आएगी झाड़ू देने में भी रुचि आएगी सतु जी की सेवा करने में भी रसोई बनाने में भी हरि कथा बोलने में हरि कथा सुनने में कोई भी गुरु जी की सेवा हो वैष्णव की सेवा उसमें रुचि आएगी उत्साह उत्साह नित्य तब वो समझेगा कि ये भगवान का साक्षात्कार हो उसके लिए भगवान दर्शन देने के लिए आतुर हो जाएंगे वो आतुर नहीं रहेगा वो सेवा में आतुरता बन जाएगा भगवान उसको देख करके उसको दर्शन दे देंगे मुद्रा ग्रंथ स्थापन भक्ति ग्रंथ प्रचार नाम हट का प्रचार के द्वारा ही मायापुर की प्राकृतिक सेवा मायापुर की प्रतीक सेवा ये मायापुर शब्द उन्होंने दे दिया कि फिर इसके द्वारा सब समझो मायापुर वृंदावन ब्रजल ये सभी को समझ लो भक्ति ग्रंथ का प्रचार उसका प्रकाशन इत्यादि उसका प्रचार हो मुद्रा जंत्र स्थापन इत्यादि द्वारा कर करके दिखलाया और अभी भी ऐसा ही चल रहा है इसको भी भजन का अंग मानो योग्यता हम पीछे से अर्जन कर लेंगे ऐसा नहीं जितनी योग्यता है बस उसमें लग जाओ परंतु जब बात विक्रम महाराज जी ने कहा ये तुम संस्कृत पढ़ो
आपको
तुम संस्कृत पढ़ो थोड़ा सा तुम्हारा उच्चारण भी संस्कृत का ठीक नहीं है उच्चारण ठीक हो जाए थोड़ा सा बस और थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान व्याकरण इत्यादि का हो जाए बहुत अच्छा है आप कहीं स्कूल में भर्ती संस्कृत पाठशाला यहाँ पर है उछड़ा वहीं पर नाम से भर्ती हो जाए किंतु गुरु जी की सेवा को छोड़ करके एक मिनट के लिए नहीं गया उनके साथ में प्रचार जाना उनका रसोई बनाना कपड़ा धोना सब समय उनके प्रवचनों को लिखना देखना सुनना संपूर्ण रूप से लगाना क्या जरूरत है देखो तो कैसे अपने आप बड़े बड़े सिद्धांत अपने आप आ रहे हैं जो बड़े बड़े भारतीयों को भी वो सिद्धांत का ज्ञान है उनकी सेवा से जरूर हो सकता है सकले मिलिया नहीं किया एक तात्पर्य की मैया हरि सेवा करूं सकले मिलिया नहीं किया बहुत कठिन बात किंतु ये हो सकता है जरूर होगा यदि भगवत भजन की गुरु सेवा की यदि ये मूल ठीक हो जाए तो ये सब अत्यंत सहज हो जाता है इसलिए सकल ही मिली जानी चाहिए एक तात्पर्य पर क्रिया इस चीज को हम लोगों को भी ग्रहण करना चाहिए। जेखाने हरी कथा सेखाने तीर्थ जेखाने हरी सेवा हरी कथा सबसे में हरी कथा बोल दे हरी कथा सुन दे हरी कथा आलोचना कर दे हरी सेवा रूपी हरी कथा रूपी ग्रंथ टीका इत्यादि सब बोले अनुशीलन कर दे तब मूल हो जाता है प्रवृत्ति निष्ठा गुरु पार्षद में दे भगवान दे हमारा सत्कर्मी द्वार करने आती है सत्कर्मी कुकर्मी ज्ञानी अज्ञानी जनी हमारा अकल्प हरि भजने हरिजने पाद प्राण वालों पर पाद प्राण बाजी प्राणदायी मैंने की
और गुरुदेव जूता भक्त
पादुका मतलब क्या उनके जितने भी विचार हैं उपदेश हैं सबको हम ऐसी भावना अब भक्ति अपने आप हृदय में आगमोत होगी भाई इन सबके द्वारा हमारा अकल्प परिजन है पाद प्राण बाही कीर्तनीय सदा है मंत्र दीक्षित स्पष्ट स्वभाव निंदा ना कर जाए खबरदार इससे बचो यदि भजन करना चाहते स्वभाव की निंदा नहीं करके आत्मसंशोधन करो आत्मसंशोधन मैंने कहा कैसे आत्मसमर्पण करके अधम को भक्ति नहीं हो रही इसकी अनुभूति करते हुए संशोधन करते 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 स्वभाव की निंदा मत करो दूसरी कार्य जो भगवत भक्ति कार्य है इसको ग्रहण करो पद्म जीव मात्र में या पद्म जीव क्या सुखदेव गोस्वामी है हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी हैं उनका प्राकृतिक दृष्टि से विचार करने पर बहुत से दोष मिलेंगे महाप्रभु जी में भी बहुत दोष मिल जाएंगे प्राकृतिक नित्यानंद प्रभु में देखो तो कितना दोष दिखा करके लोग पथ भ्रष्ट चलो के विचार को छोड़ो पशुभाव की हम निंदा जो करते हैं इसलिए तो करते हैं अब किसी से बैठती नहीं है पटरी नहीं है तो पशुभाव की निंदा ना उनके गोड़ को और आत्मसंशोधन करो निंदा हमको कैसे भजन नहीं हो रहा है हम दूसरों का दोष क्यों देखने जा रहे हैं आई एम पॉइंटिंग आउट ऑल काइंड्स ऑफ फॉल्स टू अदर नेवर गिव टू अपनी लिए देखो हमको क्यों नहीं बुरा कहां त्रुटि हमारी हो रही है दिन रात्रि में देखो और रो इसके लिए पर स्वभाव की तरफ से मत जाओ और नहीं तो होगा क्या फिर नारद जी भी दोष दिखेगा नारद जी में क्या दोष है दूसरे का घर बिगाड़ के ये देखे मैंने प्राकृतिक दृष्टि से क्या देखे सबको घर बिगाड़ इधर कहें नारद दृष्टि में अपनी बुद्धि से विचार और जब शास्त्रीय बुद्धि से विचार करें शास्त्रीय बुद्धि माने वो जो गुरु परंपरा हमारे के विचार से धारा के भक्ति के विचार से देखेंगे नारद जी कहते हैं भगवान के समान भगवान नारद उपास भगवान का क्यों उनके प्रतिक्रिया से ही भक्ति होती है उनके अभिशाम पास देने से भी भक्ति होगी और किस बात क्या है किसी को श्राप दे देंगे जाओ तुम वृक्ष हो जाओ तो क्या हो गया जमला जी बन गया कहां गति और बोलो वृंदा बन गए इस तरह से समझे महापुरुषों का क्रोध भी क्रोध नहीं है वो एक दया का अंग है हम लोगों का क्रोध क्रोध क्या है द्वेष है उनका द्वेष नहीं होता महाप्रभु की नीति में छात्र नीति वैश्य नीति शूद्र नीति यवन नीति देखते पाई ना तो बात ही करते हम लोग इसमें कुछ कुछ लगे हैं तो इस समय जाओ विदुर नीति में आओ और विदुर नीति से भी ऊपर में और आओ तो फिर उद्धव नीति में आओ और उसके बाद में ललिता विकास आदि की प्रेस की रीति में आओ। हम लोग महाप्रभु की नीति में छात्र नीति, वैश्य नीति, शूद्र नीति, यवन नीति नहीं देखते पाई न, तथा प्रचारित वास्तविक से पूछते पाई तीन रीति नीति सर्वोच्च सिंह है। सर्वोच्च सिंह कौन रीति है? सर्वोच्च उद्धव जी हैं, हमारे सुखदेव गोस्वामी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, ये लोग हैं, नारद जी हैं, ऋषि हैं। इसके भी सर्वोच्च सिंह कौन सा? वो वृंदावन भाव है, वहां पर प्रेमा भक्ति है या प्रेम भक्ति है, ऊपर में अवस्थित है। हम लोग भी उनका पदानुसरण करेंगे। ब्रह्मनीति भागवत धर्म और अवलंबन कर, ब्रह्मनीति माने ब्रह्मा चतुर्भुज, और फिर अंत में भागवत धर्म, भागवत धर्म माने भागवत में जो कहा वंदे नंद ब्रजे श्रीनाम पारण्य अभेक नंद अथवा जावैत्र्याचित अजात भी आत्मकामय योगेश्वर सदात्मनि राष्ट्रपुष्यम कृष्ण से तम भगवत चरणाय बिंदम नष्टम तनेश बीजहु पंजा। ये था इसको समझ करके कहना चाहिए।